तो हम लोग आज भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक की चर्चा करेंगे, दूसरे श्लोक से चर्चा करेंगे। मेरे विषय बोलिएगा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेने महता योगो नष्टः परन्तपा। देखिए अर्थ बड़ा स्पष्ट है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, इस प्रकार से इस ज्ञान को, इमं मतलब इस ज्ञान को राजर्षियों ने परंपरा में प्राप्त किया था। परंपरा का याद आ रही है, भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, विवस्वत मनु को, विवस्वत ने इक्ष्वाकु को दिया, एवं परंपरा प्राप्त। एक इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवद गीता का ज्ञान इंद्रियों के इंद्रियातीत ज्ञान है। तो परंपरा मतलब गुरु जी, इधर बैठो आराम से बैठो, ठंड में क्यों बैठे। तो गुरु जी जिस तरह से बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उस समय मेरी इंद्रियां उसको उसी प्रकार से अनुभव कर सके। जो गुरु ज्ञान दे रहा है, दिव्य ज्ञान बोल रहे हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तुरंत तो उसका मतलब नहीं कि मुझे अनुभूति हो जाएगी। लेकिन हमें परंपरा में एक मुख्य बात क्या सीखनी है, क्या कहते हैं सबमिसिवनेस को, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, विनम्रता से स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यह ज्ञान मेरी इंद्रियों के परे है, भगवद गीता का ज्ञान। तो इसलिए आवश्यक है कि हमने को भक्ति वृक्ष में वैसा बातें सीखते हैं कि जो इंद्रियातीत ज्ञान है, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के परे है, उसको हमें श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि ये ब्लाइंड श्रद्धा नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, क्योंकि यह प्रमाणिक परंपरा से ज्ञान स्वीकार करेगा। और एवं परंपरा से ये भी समझ लेना चाहिए कि यह परंपरा सामान्य परंपरा नहीं है। इस परंपरा की विशिष्टता क्या देख रहे हैं आप, महाप्रभु, महाप्रभु भगवान, इसके ओरिजिन। बहुत अच्छी बात देखने वाली कि एवं परा से मतलब ये जो परंपरा है ये भगवान से शुरू हुई है। क्योंकि आपको ध्यान देना चाहिए कि फालतू परंपराएं भी बहुत हैं कलयुग में, बहुत सारे मेरे गुरुजी थे ये, जो उसके बाद एंड में कहा था कुछ गोरख बाबा को, ये बाबा वो उसके ओरिजिनेटर थे। या जैसे कि एक संस्था भी है, उसका नाम क्या बोला जाए, ब्रह्म कुमारी, तो उनका भी 100 साल पहले परंपरा चालू हुई, वो बोलते थे हमारे गुरुजी को भगवान ने ज्ञान दिया, गुरुजी भगवान ने ऐसे करके। तो यह परंपरा से आपको प्रामाणिक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। एवं परंपरा का मतलब क्या है, भगवान से शुरू होने वाली परंपरा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन भी कर सकते, पहले मैं थोड़ा श्लोक समझा दूं, फिर बोले सक। फिर आप कहेंगे, मान लीजिए अर्जुन कहेंगे, फिर कहेंगे बता रहे हैं जब परंपरा है तो आप क्यों बता रहे हैं, तो शब्द हो गया सकाले नेह महता, बहुत समय बीत जाने के कारण वह ज्ञान नष्ट हो गया। योगो नष्ट है परंतप, वो जो महान योग मैंने बताया जो मुक्ति का कारण बनता है, उसके द्वारा मुक्त हो जाता, वह काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। अब आप लोग ये बताइए कि काल का प्रभाव होता क्या है, प्राय काल के प्रभाव को इस जगत में आप किस प्रकार से अनुभव करते हो, कैसे देखते हो, काल नहीं दिखाई पड़ता है, काल के प्रभाव को देखते हैं। एक शब्द है छोटा सा बताइए, जिसकी जिसका दो शब्द, दो अक्षर का शब्द है, इसके पीछे दूसरा शब्द है या, और पहला वाला क्षय के रूप में। वैसे वृद्धि भी कराता है, लेकिन आप वस्तुतः देखेंगे तो केवल क्षय हो रहा है, कोई वस्तु समय में आती है धीरे धीरे क्षय होता है, तो रूपांतरण भी कह सकते हैं। यस, तो काल को हम इस प्रकार से अनुभव करते हैं। तो अब एक विचार करने वाली बात है कि जो भगवान ने परंपरा शुरू करी तो क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये काल में, कालांतर में ज्ञान नष्ट हो गया, ये कभी विचार किया है, कुछ बोलना चाहते हैं, यस माइक पे बताइए दीजिए। ये थोड़ा विचार करने वाले बात है कि काल से क्या हो गया, कि नष्ट कैसे हो गया,
क्योंकि हाँ माइक, जैसे ये जो परंपरा है मतलब एज इट इज बोलने को, मतलब मोर्स के कारण जो है ना, जैसे जब मोर्स से प्रभावित हो जाते हैं तो मैसेज,
बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश में बोला, हिंदी में समझाइए। देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, मान लीजिए कोई कोई गुरु जी बोल रहे हैं, वह तो आत्म साक्षात्कार ही है, लेकिन शिष्य ने अगर ठीक से नहीं समझा तो फिर वह अगर उसको आगे ज्ञान दूसरा प्रस्तुत करेगा तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, संस्था रहती है अगर, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बोला, गलत हो गया, मान लीजिए गलती से भी गलत हो गया, तो दूसरा वक्त से आप पूछ सकते हो। इसलिए संप्रदाय बहुत फायदेमंद चीज है, मान लो कहीं कोई मिस्टेक त्रुटि हो भी रही है तो अन्य भक्त हैं इसको देखने के लिए कि यह कहीं त्रुटि ना हो। तो काल का प्रभाव इस प्रकार से हुआ होगा कि किसी राजर्षि ने या जो भी नहीं रहा कोई वीड़ा आ गया होगा बीच में या जो भी कह लीजिए, उसने समझा नहीं ज्ञान को और भैंस ने नष्ट कर दिया। तो भगवान स्वयं देख रहे हैं, और ये भी ध्यान देना चाहिए कि लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, भगवान देख रहे हैं कि धर्म की ग्लानी कब हो रही है और कितनी हो रही है और कब आना है और कितनी मात्रा में आना है। ये बात समझ रहे हैं, कितनी ग्लानी हो रही है, धर्म की स्थापना कैसे करनी है भगवान को पता है, ये तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लानी हुई, हम आगे पढ़ते हैं श्लोक के शब्द अर्थ समझ में आ रहे हैं, राजर्षि इत्यादि तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अनुवाद इस प्रकार यह परम, आपको कुछ प्रश्न था? यस, माइक दीजिए, पूछिए।
हम लोग का जो परंपरा है, गुरु परंपरा है, भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद है, इस तरह की अर्जुन का ये परंपरा है, इस तरह का
ये अच्छा प्रश्न है, कई बार आता है। देखिए, एक होता है ऋषि परंपरा और दूसरा होता है राजर्षि परंपरा। तो ऋषि परंपरा कभी भिन्न नहीं होती, कभी खराब नहीं होती, लेकिन राजर्षि परंपरा में संभव है। जैसे अब आप देख लीजिए, समय कोई राजर्षि नहीं है, एक भी पॉलिटिशियन को भगवद गीता का एक श्लोक भी पता नहीं होगा, और पता भी होगा तो बिल्कुल अलग। अभी मेरे स्टूडेंट वायु सेना में गया है, तो उसमें वो एडमिशन हुआ तो उसने मुझे श्लोक भेजा कि जिसमें दिखा रहा है भगवान गीता का श्लोक है, जिसमें वो भगवान दिखा रहे हैं कि मैं आकाश में भी हूँ, यहाँ पे भी हूँ। तो फिर उसको इंटरप्रेट किया, जैसे जैसे भगवान आकाश में वैसे हम भी आकाश में आकर के शत्रु को अटैक करेंगे। तो यह तो गीता का श्लोक अर्थ नहीं हुआ ना, ये तो भगवान का गुणगान नहीं हुआ ना। तब देख रहे हैं कि श्लोक तो गीता का ले लेते हैं लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक बार महाराज बता रहे थे कि लिखे हुए हैं LIC में योग क्षेम वहां में हम भगवान बोल रहे हैं कि मैं योग क्षेम वहन करता हूँ, LIC वाले क्या योग क्षेम वहन करते, एक दिन रोटी भी ला के नहीं देंगे। तो इसी प्रकार से लोग भगवद गीता का उपयोग करते हैं, क्योंकि गीता में श्रद्धा है तो और दूसरा गीता का ज्ञान नहीं है। भारत में गीता का श्रद्धा है लेकिन गीता का ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी उठा करके दे देना चाहिए। तो काल के प्रभाव से ऐसा होता है, हम उस पर डाइवर्ज नहीं करें, अनुवाद रखते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। देखिए, विज्ञान तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि था, लेकिन भगवान जान रहे हैं कि ये वैसा नहीं था जैसे मैंने दिया था। आप मेरी बात समझ रहे हो? भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान जान रहे कि इस समय ये ज्ञान वैसा नहीं रहा जैसा मैंने मूलतः सूर्यदेव को दिया था। तो भगवान आकर उसको व्यवस्था करते हैं। आप कभी नहीं सोचते कि प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से भगवद गीता का प्रकाशन किया, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कोई संभावना थी गीता समझने की? तो ये भगवान ने व्यवस्था बनाई कि प्रभुपाद जी आकर के ऐसा भगवद गीता का प्रकाशन करें और सब जगह गीता को यथावत समझ पाए। हम लोग को तो बड़ा आसान लगता है, सोच लीजिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य ना हो तो हम क्या समझेंगे, है ना? पांडव हमारी इंद्रियां हैं, शरीर हमारा कुरुक्षेत्र है, ऐसे ही करके जाए और गंतव्य हमारा नरक है। इस प्रकार का अपराध करते हैं गीता भूषण टीका। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कई बार आपसे प्रचार में प्रश्न करेंगे कि इस समय भगवान क्यों नहीं आ रहे। भगवान जानते हैं कि धर्म की स्थापना कैसे करनी चाहिए, तो या तो अपने किसी दूत को भेजेंगे या स्वयं आएंगे, लेकिन वो उनको पता है आप भगवान नहीं हो। इनको बताना चाहिए कि आप भगवान नहीं, आप भगवान को डिक्टेट नहीं कर सकते अभी आओ ऐसे आओ। और दूसरा बात, ये जो पूछने वाला व्यक्ति ये भी जान रहा है कि वह कितने अधर्म में है, भगवान को दिखा देंगे तुम अधर्म में हो और तुम्हारे गला काटूंगा, तब है फिर कहते नहीं नहीं आप अपने धाम में रहिए, हम यहाँ पे खुश है। ये भी सोचने वाले पर खैर गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। इस प्रकार महान राजर्षियों ने इस योग को जाना जो गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त हुआ और जिसका प्रारंभ विवस्वान से हुआ और जिसको इक्ष्वाकु सरीखे पूर्वजों के द्वारा उन्हें दिया गया। स्पष्ट है यह योग का संप्रदाय। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, राजर्षि से क्या समझते हैं आप? राजर्षि शब्द का महत्व क्या आप समझ रहे हैं? बोली, राजा तो भोग विलास में रहता है तो राजर्षि क्यों कह रहे हैं? जो राजा भी होते हैं और जो साधु भी होते हैं,
उनका स्वभाव मतलब साधु के जैसा।
हाँ, तो उसका अर्थ क्या है?
मतलब वो भगवान के भक्त होते हैं।
यस, ये नहीं सोचना चाहिए कि भोग विलासी व्यक्ति, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा आखिरी में भगवान गीता में कह रहे हैं जिसके जीवन में तप नहीं है वो गीता नहीं समझ सकता। तो राजर्षि का मतलब है कि भले ही वो राजा है लेकिन वो दायित्व लेकर के सेवा कर रहा है, वो अपने को भोक्ता नहीं मान रहा, भोगी नहीं। ठीक, इसलिए उस ये बात समझ में आना चाहिए कि इंद्रियां शुद्ध नहीं है, जप नहीं कर रहा है तो गीता भागवत समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए जब आदमी तपस्या कर रहा है, कुछ इंद्रियों में संयम कर रहा है, भाई भगवत गीता को समझ सकता है, तो ये बात महत्वपूर्ण रखनी चाहिए। इसलिए लिखा है इक्ष्वाकु सरीखे पूर्वजों के द्वारा मिल दिया गया। यह योग का संप्रदाय इस जगत में काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। ठीक है, इतने ही तात्पर्य को आप पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेंगे? अनंत कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे प्रभुपाद का तात्पर्य। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे।
तो क्या पॉलिटिक्स है इसमें? क्या राजनीति सिखा रहे हैं?
भगवान की भक्ति में
हाँ, बहुत अच्छी बात है। राजा का आपको याद है ना वो श्लोक, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् और क्या गुरु न सस्यात् माता न सस्यात्, ऐसे करके लिखा है। तो देव राजा बनने का भी अधिकार नहीं है। यदि समुपरेत मृत्युम, कितना बड़ा दायित्व है। आप सोच रहे हैं एक एक प्रजा का ये मतलब व्यवस्था करना कि वह दोबारा जन्म न ले, तो एक मैनुअल की तरह जो है एक राजा को लेना पड़ेगा गीता को, और उसके बाद वह राज्य करेगा। प्रभुपाद जी इसको पृथ्वी महाराज के प्रसंग बताते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं क्षत्रिय को शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये उसी को आप ले लीजिए मंदिर का मैनेजर है, तो ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ही करते रहो, उसको ये पता ना कि गीता में गा कहां से शुरू हुआ, समझ रहे ना। तो फिर वो मैनेजमेंट जो है वह लौकिक दृष्टि से होगा, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से मैनेजमेंट होता है। उसका उद्देश्य क्या है हमने सीख रहे हैं, प्रभु जी ने क्या बताया अभी,
भगवान
की अंततोगत्वा, सारे कर्मों को हर किसी को सिखाना है कि वह कर्म करे और भगवान की तरफ उन्मुख हो। ठीक है, ये बात हम भागवत में भी पढ़ेंगे, जो कर्म भगवान को समर्पित होते हैं वह भक्ति का कारण बनते हैं। ब्रह्म कर्मणि भावितम, भले लग रहा है कि बाहर रूप सामान्य कार्य कर रहा है, लेकिन उस कार्य को भगवान, जब वो भगवान की तरफ समर्पित हो जाता है तो फिर उसके हृदय में भक्ति को जागृत करते हैं। भले वो सीधी भक्ति नहीं है, लेकिन जब कर्म भगवान को समर्पित होने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होकर के भगवान के पास आता है। ये तो हम सीख ही रहे ना सब निष्काम कर्म योग इत्यादि में पढ़ी।
निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुष के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते।
क्या सीखा आपने इसमें, किसके लिए नहीं है, किसके लिए है? अभी क्या सीखा था, जो राजर्षि है उसको स्पेशली मैनेजर के लिए है। देखा जाए तो सबसे बड़े मैनेजर को दिया जा रहा है, अर्जुन को दिया जा रहा है, और स्वभाव की बात है युधिष्ठिर महाराज को भी मालूम चला होगा, मालूम ही होगा, किस लिए, सब यानी कि उस ज्ञान का प्रसार, प्रचार और प्रसार वह पूरे भारत में पूरे विश्व में हो सके। तो भगवान धर्म की स्थापना कैसे करते हैं आप बताइए, कैसे क्या सीख रहे हो आप, किस प्रकार से भगवान धर्म की स्थापना करते हैं? हमेशा तो भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, उनके भक्त के द्वारा वह भक्त को शक्ति देते हैं ताकि वह पूरे जगत का संचालन इस प्रकार से कर सके कि पूरे विश्व में प्रचार उस धर्म को समझ पाए लोग। देखिए भागवत धर्म समझना इतना आसान है नहीं जितना हम सोचते हैं, तो परंपरा में ज्ञान प्राप्त होता है तो समझ में आ जाता है, नहीं तो क्यों बोलते यमराज जी बहुत मुश्किल है समझना, है ना। नाम का महिमा, भागवत की महिमा, भगवान को प्रणाम, कोई भी भगवान के लिए सेवा करने की महिमा को समझ में नहीं आता लोग, कि एक बार प्रणाम करने से जो है इतना समझ में आता है सूर्य नमस्कार बार बार प्रणाम करूंगा तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एक बार प्रणाम करूंगा तो मेरा जो है जन्म मृत्यु का रोग ठीक हो जाएगा। तो इसलिए भागवत धर्म को समझाने के लिए राजा को जानना बहुत जरूरी है। आप जानते ही हो कि अशोक ने किस प्रकार से बुद्ध को समझा तो बहुत धर्म का प्रचार कर दिया, तो ये बहुत बड़ा दायित्व है। पढ़िएगा आगे।
अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ,
उच्छिन्न मतलब ढक गया,
वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है।
था ना, भगवान हर क्षण ऑब्जर्व कर रहे हैं कि धर्म कितना डाउन हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो चाबी देते। यस,
अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है।
एक बात इसमें इम्पोर्टेंट है, पहले ये मेरा प्रश्न है कि गीता का उद्देश्य क्या है?
भगवान
की भक्ति करना है तो ठीक है, थोड़ा सा गीता के शब्द में बोलिए।
अपने
कर्तव्य करते हुए भगवान की भक्ति करना ठीक, सर्वधर्मान ये यही बात हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप याद हो 18वें अध्याय में हमने सीखा था कि कोई व्यक्ति अपने अंत में बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं कि कोई व्यक्ति स्वीकार करे कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान की सेवा में लग जाऊंगा, सेवा करूँ निस्वार्थ भाव से, तो ये भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट करता है। ये गीता का उद्देश्य है। तो सारा गीता के अध्याय का या जितने भी पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? सारे धर्मों को छोड़ करके भगवान की शरण में आना, ये एक मूल बात है। उसको उसको नष्ट किया हुआ है ठीक। दूसरा चीज, जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं है वो क्या गलती करेगा?
अपने मत के अनुसार
देगा तो क्यों देगा?
गुरु
परंपरा में नहीं है और एक और वो क्या सोच रहा है? अपने आप को केंद्र में रखो, सोचना बहुत बुद्धिमान हो, न सिर्फ इतना बुद्धिमान हूं कि भगवान से भी अधिक बुद्धिमान हूं। भगवान कुछ स्पष्ट नहीं किए तो मैं स्पष्ट करूंगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं सूर्य है तो सूर्य के सामने आपका लालटेन क्या करने वाला है? भगवद गीता सूर्य के समान है, अपनी लालटेन मत दिखाओ सामने से, समझ रहे ना मेरी बात? तो जैसे आप सब जानते हो सारे धर्मों को छोड़ गए मेरी शरण में आओ, अब वो लालटेन चालू कर देते हैं। सूर्य के समान स्पष्ट है, किसकी शरण में जाना है? शानू गीता के कितने श्लोक पता है आपको? गीता के कितने श्लोक पता है आपको?
5-6।
अभी नहीं, मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ। अब ये सर्वधर्मान परित्यज वाला श्लोक का अर्थ क्या है? जरा माइक दीजिए शानू।
समस्त लौकिक धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ।
मेरी मतलब
भगवान की।
अब इनको 5-6 श्लोक पता है लेकिन जो मुख्य श्लोक है उसका अर्थ पता है। और ऐसा हो सकता है जो किसी को 700 श्लोक है पता हो लेकिन जो मुख्य श्लोक है उसमें मेरा अर्थ नहीं समझ में आता। आप सोच रहे हैं ना, सारा को पता चल गया कि कृष्ण की शरण में जाना है, कृष्ण एक व्यक्ति है, कृष्ण भगवान है, आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही है। और 700 श्लोक जानने के बाद भी लोग कहेंगे नहीं मेरा मतलब भगवान के अंदर ब्रह्म है, उसके अंदर भूत है ना क्या है, वो बोल रहा है, कृष्ण नहीं बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं, ये है वो। तो आप देखोगे कि ये भ्रांतियां क्यों हो रही है, क्योंकि गुरु परंपरा में स्वीकार नहीं कर रहे। ये बात हमको बहुत सिंपल लगती है लेकिन बहुत परिवर्तन कर देगी, समझ गए ना? वेरी गुड, आगे पढ़िए।
विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं।
समझ में आ रहा है ये? भाई गीता की दो तीन बात समझिए। कृष्ण को स्वीकार, श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते मतलब क्या वो कहने का अर्थ है? क्या वो कहते हैं कि कृष्ण नहीं थे? माइक दीजिए सब बातें समझ में आना चाहिए। कृष्ण को स्वीकार ना करने का अर्थ क्या है? यस,
वो लोग कृष्ण को बोले थे कि भगवान नहीं है, कि महान पुरुष है।
हाँ, एक बात, एक धारणा ये है कृष्ण थे लेकिन वो महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। दूसरा, ऐसी बातें बोलते थे कृष्ण बहुत अच्छे अवतार थे लेकिन जब तक वो गोपियों से नहीं मिले तब तक गोपियों के मलकर उनका चरित्र डिस्टर्ब हो गया, ऐसी बातें। तो ये सारी बातें जो हैं ये सब कृष्ण के ऊपर अपनी मनोकल्पना को धारण करना। जैसे सीधी सीधी बात, अगर हम लोग मल को छू लें तो हमें क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। हम मल को पवित्र कर सकते हैं? अच्छा, तो पूरी दुनिया के मल को पवित्र कर सकता है छू करके? सूर्यदेव करते। कितना सीधी बात है ना, हम जो कार्य नहीं कर सकते, हम अपने ही मल को छू लें तो हमें स्नान करना पड़ेगा, लेकिन सूर्यदेव पूरे जगत के मल को सुखा कर से पवित्र कर देते हैं। तो यही बात है, अपनी धारणा को, अपनी लिमिटेशन को, इस संस्कृत में बोलते हैं मन्ने आत्मवत् जगत। प्रभुपाद इसको कोट करते हैं, जैसा मैं हूं वह सोचता भगवान भी वैसे ही। ये बहुत कठिन बात है, इसीलिए लोग भगवान की रासलीला इत्यादि को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। एक जगह एक बार सुन रहा था, शायद मैं प्रभुपाद जी कोट करते हैं, नहीं परमपूज्य राधाकृष्ण महाराज बोलते हैं, कहते हैं कि एक व्यक्ति ने मत दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गीता किसी एक व्यक्ति ने बोली हो, इतना अच्छा ग्रंथ है ये एक व्यक्ति कैसे बोल सकता है। ऐसी धारणा लोग करते हैं, अरे भगवान क्या नहीं बोल सकते, ठीक है। अच्छा, कृष्ण के नाम पर व्यापार कैसे चलाते हैं वो लोग, ये जरा सोचिए आप, ये बड़ा ट्रिकी प्रश्न है। कृष्ण के नाम पर व्यापार कैसे चलाते हैं, किताब तो बेचते हैं, कृष्ण के नाम पर कैसे चलाते हैं। देखो प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बोलते, कहते हैं इसमें सुना था लेक्चर, कहते हैं कि देखो अगर वह अपनी गीता लिखते तो कोई नहीं खरीदता, लेकिन भगवत गीता लिखे है और उसमें टीका अपनी लिख दी है तो खूब खरीदते हैं, समझ रहे ना। तो है ना, आप कहीं और किसी की ले लेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन गीता लिखी है, भगवत गीता लिखा है तो विश्वास कर खरीद लेगा आदमी। तो भगवान कृष्ण के नाम पर जो है अपना व्यापार चलाते हैं, ठीक है। ओके, पढ़िए आगे, पढ़िए नाम कृष्ण।
यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं, अतएव अंग्रेजी में
प्रभुपाद जी कहते हैं इसको, वी वांट किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, समझे। भगवान का राज्य चाहिए, सारे भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन भगवान भी चाहिए, भगवान बढ़ाओ यहां से, मैं भगवान बनूंगा इसी करके, यस।
अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसकी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथा रूप मानवता के लिए महान वरदान है।
क्यों? क्योंकि इसको बहुत सुंदर बलदेव विद्याभूषण जी ने समझाया था उनके इंट्रोडक्शन में, उसको प्रभुपाद जी ने भी लिया है, फिर भी आप लोग बताइए।
जो भगवान का जो मैसेज है वो एज इट इज प्राप्त है,
ठीक। और बहुत अच्छा, इस लाइन पे काफी आप बोल सकते हैं कि क्यों वरदान है,
इसके साथ साथ आचार्यों का कृपा भी उसमें, ताकि और समझ सके।
मैं अपनी बात बोल दूंगा, बाकी आप लोग भी बोलिए। पहले आप लोग कुछ बोलिए, क्या और कहना चाहते हैं, भगवत गीता को महान वरदान क्यों मानते हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं। माइक पे माइक ही बोलिए, माइक दीजिए। हाँ, आप बोलना चाहते हैं।
गोलोक जा सकते हैं,
गोलोक जा सकते हैं, गुड। और
जैसे एक भगवान और मतलब मनुष्य का संबंध भगवान से,
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का संबंध भगवान से क्या है, जीव मात्र का संबंध क्या है,
उसका क्या
ये बड़ा सार रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया है। इसको बलदेव विद्याभूषण जी और श्रीला प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हर व्यक्ति अविद्या रूपी बाघनी के मुंह में फंसा हुआ है। अविद्या रूपी जो अपना स्वरूप को भूले हुए हैं, उसको बाघनी से पकड़ा हुआ, बाघनी छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से, क्या छोड़ेगी नहीं, बाघनी समझते ना, बाघनी फीमेल टाइगर, उसने पकड़ा हुआ है उसको, हर जी को मुंह में पकड़ा हुआ एकदम कस के, और समझ सकते हैं कितना जबड़ा शक्तिशाली होता है बाघ का। तो अविद्या इतनी कठोर है, उस पर एकदम कुठारा घात करते हैं, समाप्त करती है भगवद गीता। देखो जितनी बार सुनते हो हम शरीर नहीं आत्मा, एक कुछ अंदर चमकता है कि नहीं चमकता, आप जितने भी सोच लो कि ये समस्या है वो समस्या है, पद पंकज आंगिर प्रभु बोल रहे बहुत सुंदर क्लास दे रहे थे, हम लोग शाश्वत है, समस्या क्या है। और आप कई बार आप हम लोग इसी पिछले वाले श्लोक को देख लीजिए, कितने मनु बीत गए, क्या हो गया, प्रभुपाद उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमारा जीवन की क्या वैल्यू है, हमारी प्रॉब्लम्स की, हमारी सफलताओं की क्या वैल्यू है, मैं बात समझ रहे हैं। तो अगर आप आत्मा के दृष्टि से देखेंगे तो काफी सारी समस्याएं जो है समस्या नहीं रहती, तो बहुत बड़ा वरदान है। तो इस बाघनी से बचाते, वही सब आप लोग भी बोल रहे थे, भगवान से संबंध समझते हैं, अच्छी बात। किंतु यदि इसे
मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा।
क्या मतलब है मानसिक चिंतन समझ,
मतलब इन पे विश्वास न करके सोचे कि ऐसे ही कुछ अपना मन का लिख दिया, तो
बहुत ये देखो बिना श्रद्धा एक ऐसी चीज है, भगवान आगे हम नवे दहम पढ़ेंगे, जिसको श्रद्धा नहीं उसे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। जिसने यह सोच लिया कि कृष्ण भगवान नहीं है, सामान्य व्यक्ति है, मोघश मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचित सह राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रिता, कुछ भी प्राप्त नहीं, न स्वर्ग मिलेगा, न मुक्ति मिलेगी, न भगवतम, कुछ भी नहीं। मोघ मतलब सब विफल, कौन से अपराध से, कृष्ण को भगवान, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जो तत्व का विभ्रम है, तत्व की अंडरस्टैंडिंग है वह बिल्कुल, सॉरी विभ्रम नहीं होना चाहिए, तत्व क्या है, कृष्ण क्या है, समझना बहुत जरूरी तत्व, तभी हम भगवान की लीला को भी ठीक से समझ पाएंगे, ठीक है। कोई प्रश्न आता आगे बढ़े। आप कुछ अच्छा प्रश्न आपका हो गया। टेक्स्ट नंबर 3, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतद् उत्तमम्। स इवायम मया तेद्य अद्य ते मतलब आपको, मया मतलब मेरे द्वारा, एव निश्चय ही अयम स एवायम, अयम कहाँ गया? अनुवाद में अयम नहीं दिख रहा ना, स एवायम, अयम इसमें शब्दार्थ में नहीं है, मिस्टेक है लग रहा है, मतलब उसमें होगा, बुक में होगा, मैं तो इंटरनेट से कॉपी किया था। तो अयम मतलब ये ज्ञान, आयम होना चाहिए ना, शब्दार्थ में नहीं है। नहीं नहीं वो तो है, शब्दार्थ में नहीं है, शब्दार्थ में मिस्टेक हो गया। शब्दार्थ में मैंने इंटरनेट से कॉपी किया था, अगर भगवद गीता होगी तो दिखाइएगा, हिंदी वाली है तो है आपके पास, रूम में लेके आ सकते हैं, देख लीजिएगा। खैर इसका आयम का अर्थ होता है ये ज्ञान। तो स एवायम वही एव निश्चय, ऐसा मत सोचना कि मैंने कुछ अलग बोल रहा हूं, वही जो मैंने सूर्यदेव को दिया वही ज्ञान दे रहा हूं मेरे द्वारा, मया ते आपको, अद्य मतलब आज, वही मैं ज्ञान आपको दे रहा हूं। कौन सा किस प्रकार का ज्ञान? तो कह रहे हैं योगः प्रोक्तः पुरातनः, पहले जो मैंने बोला था उसी योग के ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं। योग मतलब भक्ति योग, निष्काम कर्म योग इत्यादि। क्यों दे रहे हो मेरे को? भक्तोसि, आप भक्त हैं, किसके भक्त हैं? भक्तोसि में मेरे भक्त हैं, मेरे का मतलब कृष्ण, ठीक है। और न सिर्फ भक्त हैं, भक्त में भी क्या विशिष्टता है? सखा है, साक्य भाव में है। इति रहस्यम ही तद उत्तमम, इसलिए मैं आपको ये रहस्य बता रहा हूं, ठीक है, उत्तम रहस्य जिससे हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। शब्द अर्थ समझ में आ गए? अयम यहां पे अयम यह है, वही अर्थ है, ठीक है। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये बड़ा बड़ा अच्छी बात है, आप कभी प्रवचन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो लोग एकदम बुद्धू हैं उनको प्रवचन देने में बड़ी कठिनाई अनुभव होती है कि हम क्या बोलेंगे समझ में आएगा इनको। कोई जप नहीं कर रहा है तो आप हर बार बस यही बता सकते हो, मानव जीवन पशु जीवन में अंतर, भक्ति वृक्ष चैप्टर 1, फिर जीवन में कष्ट है भक्ति वृक्ष चैप्टर नंबर 2, तो उसको भी कितना समझेंगे वो अलग बात है। जैसे एक बार मैं समझा रहा था, मैं लंबी कथा नहीं बोलूंगा, लेकिन कि भाई हरि नाम से आत्म साक्षात्कार होता है, तो दो माता जी थी और उसके बाद क्या समझ में आया, हाँ जब जप करते हैं तो मन में थोड़ी शांति है, ठीक। उससे अधिक कुछ समझ ही नहीं सकता, हमको समझाए कि ये हम शरीर नहीं है, वो तो कठिनाई अनुभव करेंगे समझाने में भी। वस्तुतः तो मेरा स्वभाव हो गया कि पब्लिक को क्लास देने का मन नहीं करता, बोलते हैं पब्लिक को एड्रेस करो, लेकिन इतने सारी पब्लिक होती है क्या समझाएंगे। तो खाली कहने का अर्थ ये है कि वक्ता चाहे कितना भी महान हो लेकिन श्रोता की समझने की शक्ति भी होनी चाहिए। और क्या हमने योग्यता सीखी यहाँ पे समझने के लिए? भक्त है, संस्कृत का ज्ञान है नहीं, आगे की बात। संस्कृत जाने वाले देखिए सीधी बात समझिए, मायापुर महाप्रभु के समय में क्या संस्कृत लर्निंग की सीट था कि नहीं था? गढ़ था ना, संस्कृत सब सीख रहे थे। तो ये क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि कृष्ण भगवान है? केवल आप बड़ा स्पष्ट चेतन भागवत पढ़ेंगे, केवल जो आदित्याचार्य जी थे वही व्याख्या करते थे भक्ति परक व्याख्या, बस गीता की, और कोई नहीं करता था। तो ये सोच, सब लोग चंडी जी की उपासना, दुर्गा जी की उपासना, ये उपासना उपासना, कृष्ण के भजन नहीं करते थे, बहुत थोड़े भक्त थे। आप सोचते प्रभुपाद जी पहले क्या लोग क्या गीता नहीं पढ़े? लेकिन जो लोग परंपरा में प्राप्त नहीं किए, मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम भरतपुर में जाते हैं, माता जी एमए वगैरह बहुत पढ़ी हुई संस्कृत, कह रहे हैं हम लोग गीता पढ़ चुके हैं, ईश्वर उपनिषद पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ रहे तब समझ में आ रहा है। खूब संस्कृत जानते हैं, लेकिन संस्कृत जानने मात्र से आप भगवान को नहीं जान सकते। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे भक्त ने बोला था कि आप इंग्लिश जान लेंगे इसका अर्थ ही नहीं कि आप थर्मोडायनेमिक्स समझ लेंगे। समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स का जो कोई साइंस की किताबें अंग्रेजी में लिखी है तो भाषा जानने मात्र से नहीं समझ पाएंगे, टीचर से पढ़ना पड़ेगा। भाषा जानना जरूरी है, लेकिन मेन बात हमें क्या देखना है, भक्त हो और मेरे मित्र हो। भक्त हो मतलब मुझसे द्वेष नहीं करते। क्या आपने कभी ऐसा प्रश्न सुना है, ये कृष्ण कैसे भगवान है जो अपने को भगवान कहते हैं? सुना कभी आप? कितने अहंकारी हैं। अब आप क्या उत्तर देंगे? भगवान ही सब बताएंगे ना गीता में कि मैं भक्त, मैं भगवान हूं इत्यादि, तो अपने भक्त क्यों बता रहे हैं? आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। वो भक्त, हाँ भक्त है तो द्वेष नहीं करेंगे। द्वेषी व्यक्ति क्या करता है, मान लो मैं उसे द्वेष करता हूँ, मान लो बहुत अच्छा मृदंग बजाते हो, तो मृदंग बता रहे माता जी को इम्प्रेस करने के लिए बजा रहा है। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, कोई अच्छा गा देगा, अरे तो, अरे वो तो ऐसा। तो कहने का अर्थ क्या है, मैं आपसे द्वेष करता हूं तो आपके अच्छे गुण को भी ढकूंगा। यही तो बात प्रभात बार बार समझा रहे हैं ना, कि भगवान भगवान रहे मेरी शरण में आओ, मैंने दिया है, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान की भगवत्ता को दबाना जबरदस्ती, ये बात समझ में आती है आप लोग? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस संबंध में कोई लीला समझा सकते हैं कि जिसको व्यक्ति को संस्कृत नहीं आती थी लेकिन गीता का वो अधिकारी बन गया? चैतन्य महाप्रभु के केस में क्या था वो? सब लोग ब्रह्मसूत्र बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया, साउथ इंडियन इडली डोसा, तो ना होता पूरा लीला बताओ, महाप्रभु कौन से मंदिर में गए थे, उस मंदिर में गए थे क्या देखा, थोड़ा सा समझ देना चाहिए फिर हम समझ पाएंगे। जानते हो आप, महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे, रंगनाथ टेंपल में थे, वहां एक ब्राह्मण था, वो गीता का पारायण करता था रोज 18 अध्याय, ठीक से नहीं कर पा, लेकिन उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो उसके बाद महाप्रभु ने कहा कि आप क्यों कर रहे थे, कहते गुरु महाराज ने बोला, और बाकी सब हंस रहे क्योंकि ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा। तो बोला कि आप क्यों, फिर आप क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं आप लोग हंस रहे इसलिए रो रहे हो, तो कहते नहीं नहीं, जैसे मैं गीता खोलता हूं तो मुझे जो है दर्शन होता है कि किस प्रकार से कृष्ण इतने भगवान होने के बाद भी अपने भक्त के लिए सारथी का कार्य कर रहे हैं।
और चित्र देखता है
तो फिर महाप्रभु जो है कहते तुम ही गीता के अधिकारी हो। तो अब क्यों अधिकारी, महाप्रभु ने बोला, क्योंकि उद्देश्य है भगवान से अपने संबंध को जागृत करना, ठीक है ना? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः तुम इस विज्ञान को, दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्या योग्यता है, याद कीजिए फिर से बोलिए, क्या योग्यता है? भक्त हो सखा, ठीक है। जितने मात्रा में भगवत प्रेम होगा उतनी मात्रा में हम भगवत गीता भागवत को समझ सकते। कुछ बोलना चाह रहे थे?
जिसे वो भगवान कृष्ण को भगवान इसलिए नहीं मानना चाहता है क्योंकि वो दूसरे आराध्य को जो उसको भगवान घोषित करना चाहता है वो।
हाँ, लेकिन एक्चुअली वस्तुतः ऐसे लोग प्राय निराकारवादी होते हैं, वो किसी को भगवान नहीं मानते। कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप कृष्ण को ही क्यों मानते, शिव जी को भी मानिए। बेसिकली वो क्या कहते हैं, शिव जी को भी मानिए, कृष्ण को भी मानिए, इसको मानिए, लेकिन वस्तुतः वो कहते हैं किसी को मत मानिए, अल्टीमेटली निराकार है। ये कहना चाहते, वो ये नहीं कहना चाहते कि कृष्ण को मानिए कि शिव जी को मानिए, वो किसी को नहीं मानना चाहते। ये तथाकथित शैव जो है वह भी प्राय निराकारवादी है। अगर आपसे पूछो कि अल्टीमेट सत्य क्या है, परम सत्य क्या, तो कहेंगे निराकार, वह शिव के रूप में प्रकट होता है। तो इस ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्रीय श्रद्धा, गीता भूषण टीका। यह पुरातन योग जिसे गुरु शिष्य परंपरा में ही कहना चाहिए, वह आज मेरे द्वारा कहा गया क्योंकि एक मित्र के रूप में मैं तुमसे बहुत आसक्त हूं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या है? पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। बहुत सुंदर बात। देखो देखो, ऐसे दो बातें हैं, भगवान के मित्र हैं तो अर्जुन की तरफ से प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान की तरफ से भी है ना। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कुछ वैसा खाना बनाती है और गाय अपने बछड़े को देखकर वत्सल होकर के अपने कह सकते हैं देह का जो मतलब सार है वह बछड़े को देना चाहती है ना, उत्सुक रहती है उसी प्रकार से, और बछड़ा भी वो मारता रहता है, थन को मारता रहेगा, उत्सुक रहता है। ऐसे अर्जुन बड़े उत्सुक हैं भगवान की महिमा सुनने के लिए। आप दशम अध्याय में पढ़ोगे कि कह रहे हैं मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे भगवान भी बोलने के लिए उत्सुक है। तो ये जो कथा है ये तभी होती है जब श्रोता की उत्सुकता हो, श्रद्धा हो और वक्ता को भी प्रेम हो सुनाने का। समझ रहे ना? यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, क्या हम भगवान देख रहे हैं? भगवान वात्सल्य भावना से यहाँ पे वास्तव मतलब प्रेम है, अपने भक्त मित्र से प्रेम है, इस कारण से वो गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। वेरी नाइस। और तुम भी मित्र के रूप में मुझसे बहुत आसक्त हो। बहुत सुंदर बात, आसक्ति। सोचिए नहीं, भगवत गीता एक भक्त बता रहे थे ये भगवान का लव लेटर है सभी के लिए, वैसे तो अर्जुन के लिए है लेकिन सभी के प्रति। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, शरणागत हो और मित्र हो, इसलिए यह ज्ञान मैंने, थोड़ा मिस्टेक हो रही है, इसलिए मैंने यह ज्ञान तुमको कहा और अन्य किसी को नहीं, क्योंकि यह परम गुह्य ज्ञान है और इस कारण से इसे अन्यों से छिपाना चाहिए। अन्य का मतलब जो भगवान के, देखिए कुछ कुछ बातों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भगवान को नहीं मानना ये एक अलग बात है, प्रायः लोग भगवान को मानते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। यस, भगवान मान, हाँ भगवान होगा लेकिन उसको ऐसे मार को मतलब नहीं है, वो रहे जहां होगा वहां से मतलब नहीं। प्राय ऐसे लोग सोचते हैं भगवान, और किसी को भी भगवान मान लेते, ये भी होता है, लेकिन कृष्ण को भगवान मानना यह विशेषता है। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, महाराज बोल रहे थे, कह रहे सब लोग गॉड का भजन कर रहे हैं, जो जो टेररिस्ट है वो भी कह रहा है कि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं को मारना ये जो है हमारा अल्लाह का प्रति संतुष्ट करेगा, अल्लाह को संतुष्ट करेगा। तो ये बात ध्यान देना चाहिए कि भगवान की भक्ति की महिमा भक्तों के संग से ही प्राप्त हो सकती है। इतने शास्त्र अभ्यास चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान तभी मिलेगा जब भक्तों को संग प्राप्त हो। महाराज बहुत अच्छा बता रहे थे, जबरदस्त बात है कि भगवान पैदा होते ही खाने पीने का ज्ञान देते हैं कि नहीं, बच्चे को मालूम चल जाता है कि हमें क्या पीना है, खाना है क्या, कौन बुद्धि दे रहा है ना, देखने का, छूने का, सूंघने का कोई योग्यता की जरूरत नहीं। लेकिन जब तक भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान हृदय में ज्ञान नहीं देंगे। जैसे हमारे शानू प्रभु को बहुत ज्यादा पता नहीं भगवद गीता के बारे में, लेकिन इन्हें मेरे को आके बोला, प्रभु जी मैं अभी क्या बोले थे आप कि मेरे संग मजाक किया गया है शरीर देखकर पे। कोई मजाक तो नहीं किया, ये है आत्म साक्षात्कार के स्पार्क्स हैं। स्पार्क समझते हो ना, स्पार्क समझते, चिंगारी। जप करते करते अगर ईमानदारी से जप कर रहा है तो बीच बीच में भगवान थोड़ी चमक देते हैं, जैसे आप देखो ना काला बादल है पूरा, बीच में हल्की चमक लग जाती है तो थोड़ी देर की रोशनी होती है, फिर अंधेरा हो जाता है। अनुभव कर रहे होंगे ना आप लोग, जब जब करते हैं तो व्यक्ति समझता है कि मैं पिछले कितने अज्ञान में था, जो भी माला कर रहा है, भागवत सुन रहा है, गीत सुन रहा है, उसके बीच में भी चमक आती रहती है। मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान ज्ञान चमकाते हैं धीरे धीरे, बाकी आपके माता पिता को सब चमका रहे हैं, नहीं चमक रहे। तो यह आप देख रहे हैं कि जो ज्ञान है वह भगवान रिवील करते हैं, कब बताओ, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, तब भगवान उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। क्या प्रमाण है गीता से, मुझे श्लोक पता नहीं है, पूरा बताइए माइक पे। तेषां तो मुझे पता है, उसके आगे वाला,
तेषां सत्युक्तानां बहितां प्रतिपूर्वं ददामि बुद्धि यवनं मापयन्ति इति,
ये न माम उपयांत तेषां सतत युक्ता नाम। शास्त्री जी क्या अर्थ है इसका, माइक दीजिए, टेस्ट लेता हूं।
भक्ति में सतत लगे रहते हैं,
हाँ, भजताम प्रीतिपूर्वक, आपका
प्रीतिपूर्वक भजन
करो। यस, ये भी लाइन बहुत जरूरी है, 24 घंटे सेवा तो कर रहा है लेकिन कुछ और चाहिए, लेकिन नहीं, प्रीतिपूर्वक भजन कर रहे हैं, है ना, प्रेम से कर रहे हैं। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मतलब
मैं उनको ये ज्ञान देता हूँ जिनसे वो मेरे तरफ, मेरे पास,
मेरे पास पहुंच, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि सेवाएं तभी प्रीतिपूर्वक होती हैं जब श्रवण कीर्तन में कुछ रुचि हो, नहीं तो फिर आपको सेवा बहुत बड़ा भार लगेगी, अरे क्यों दे दिया हमको, मैं क्यों फंस गया, वो भी फ्री में सेवा कर रहा हूँ।
अच्छा,
तो पैसा लेके प्रीति होती है, कभी सोचिए आप, कभी आगे आगे बढ़ूं, पहले सोच लीजिए प्रीति के बारे में, कभी माँ को बोले हैं अपनी कि आपने बढ़िया सब्जी बनाई है, ये लीजिए 50 रुपए, उसके बाद चाटा पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सोचे है कभी मन में आया है कि माँ को 50 रुपए दूं और ना बढ़िया खाना बनाए, टिप्स दे देते हैं, बर्तन साफ कर देना, कितना कष्ट होगा सोचिए उनको। यही बात प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप मुझसे क्यों बोल रहे हो ये भौतिक वस्तुएं मांगने के लिए, क्या मैं बनिया हूं क्या? बहुत अच्छा था। तो यही बात है, इस प्रकार का देखो बातें हमको भले पता हो खूब बार बार सुनना चाहिए ताकि हम देखें कहीं हम तो बनियागिरी नहीं कर रहे कृष्ण के साथ कि मैं इतने सेवा करूंगा या इतना सेवा। सेवा से मेरा मतलब केवल वो फिजिकल सेवा से मतलब नहीं है, भजन हो, जप हो, प्रचार हो, कोई भी सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं कृष्ण से बनियागिरी तो नहीं कर रहा। एक बात बोल दूं, बड़ी एक अच्छा भक्त का अनुभव है। एक भक्त है जिनको मैं जानता हूँ, 300,000 नाम जप करते हैं वो। मैंने कहा कुछ अनुभव बताइए, तीन अनुभव बताइए जैसे होता है। तो आए थे एक बार, तो बता रहे थे, वो प्राय सबको बताते भी नहीं, तो कह रहे थे भजन कर रहा था, भजन कर रहा था, एक दिन मेरी इच्छा हुई कि रसगुल्ले खाने। तो कुछ समय बीता नहीं, भजन जैसे थाली से बाहर नहीं निकले, एक आदमी अपने आप ही पूरा बाल्टी भर के रसगुल्ले लेके आ गया। भोग लगाया हमने, और फिर जब वो खाने के लिए बैठे तो किसी ने उनका हाथ झटका दिया और उनको आवाज सुनाई पड़ी, दिखाई नहीं पड़ा कि भजन बेचना चाहते हो। तो कभी कभी आप इतने उतना भक्तों के संग भगवान सीधी विरस्य प्रकट कर सकते हो। भजन कर उनका हाथ किसी ने झटका दिया कि भजन बेचना चाहते हो, रसगुल्ले के लिए भजन कर रहे हो। बड़ी उच्च कोटि की स्थिति है। हम लोग देखो हम उस स्तर पे है नहीं, लेकिन कम से कम पहुंचना चाहिए। हम लोग कहीं ना कहीं बेच ही रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत ही इच्छा है, तो धीरे धीरे शुद्ध होंगे भगवान की कृपा से। एनी हाउ तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते हैं? हिंदी पढ़ लेते हैं आप? कौन आप पढ़ लेते हो हिंदी? मोहन पढ़ लेते हैं हिंदी? चलो चलो शुरू करो जल्दी। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं,
मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था।
तीसरी श्रेणी इसमें नहीं लिखी, तीसरी श्रेणी क्या है? अरे बताओ, सरवान है, बता नहीं रहा। तीसरी श्रेणी क्या है? न्यूट्रल भी है कोई? दो ही श्रेणी है, भक्त है और असुर है। और भक्त मतलब कृष्ण का भक्त, यानी कृष्ण का भक्त जो नहीं है वो क्या है? अब वैसे कोई बोलेंगे तो बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन ये शास्त्र का श्लोक है, किसको याद है? दौ स्वर्ग और भूतेस्मिन देव विष्णु विष्णु भक्ता स्मृतो देवा आसुरस तद विपर्या, ये करके लाइन एंड कर रहा था। दो ही प्रकार के लोग होते हैं स्वर्ग में, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं, और जो उसके उल्टे हैं वो सब असुर हैं। भगवान विष्णु की भक्ति नहीं कर,
किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है।
क्यों? हिंदी नहीं समझ में आती क्या उसको? क्या असुर के दो सींग होते हैं? पहले मैं अपने बाबा जी से पूछता था क्या असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, तो उन्होंने तो वैसे कुछ बोल दिया, इसी जगत में असुर है, इसी में है, राक्षस भी होते हैं, असुर भी होते हैं, सींग भी होते हैं, लेकिन क्या केवल सींग ही असुर का या राक्षस का वो लक्षण है? भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते। ठीक।
इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध है, इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की।
काफी अच्छा, प्रभुपाद थोड़े स्टाइल से टीका लिखे हैं, सीधे सीधे असुर बना दिया है ना। यानी गीता के तथाकथित व्याख्याकार को भी प्रभुपाद जी असुरी कह रहे हैं। क्यों? भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे। यस,
जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक है, किंतु जो असुरों द्वारा की गई है वे व्यर्थ है।
थोड़ा समझ लीजिए, एक जगह श्लोक आता है, भक्त्या तु भागवत ग्रहया न तु मिधया न टीकया। तो भागवत जो है भक्ति के द्वारा समझी जाती है, न बुद्धि के द्वारा न टीका के द्वारा। तो फिर हम प्रभुपाद जी की टीका क्यों पढ़ रहे हैं? अरे संस्कृत में शिव जी बोल रहे हैं कि न बुद्धि समझ में आती है और न टीका से समझ में आती है। मैं जानबूझकर आप लोगों से उगलवाना चाहता हूं एक बात जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, वो टीकाएं असुरों की नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? भागवत भी अप्रामाणिक टीकाएं बहुत सी हैं, प्रामाणिक टीकाएं बहुत कम हैं, जो भी कम ज्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन अप्रामाणिक टीकाएं बहुत है। तथाकथित इंपर्सनलिस्ट भी खूब टीकाएं लिखने लगे थे उसके ऊपर, लेकिन वो गलत होती है। तो वैसी टीकाओं को पढ़ करके नहीं होगा, केवल सबसे तो ज्ञान जान करके भागवत नहीं समझ में आएगी। भक्ति मतलब, भक्ति का मतलब ये हो गया कि गुरु परंपरा में स्वीकार करना है, भक्ति का कोई एक अलग से मतलब नहीं हो गया। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? भक्ति का कोई अलग मतलब नहीं है, साधना भक्ति करोगे तो जितनी भक्ति है उतनी समझ में आएगी। साधना भक्ति करने में मुख्य बात क्या है? गुरु स्वीकार करना। गुरु कहाँ स्वीकार करना चाहिए? परंपरा में स्वीकार करना चाहिए। तो गुरु परंपरा में मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे तो भागवत समझ में आएगी। कहीं कोई इसमें विरोध भी हो तो प्रस्तुत करिए, ठीक है ना।
अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में
बोल रहा हूँ कि कभी कभी अगर आप मान लीजिए आचार्य की टीका पढ़ते हैं तो लोग श्लोक कोट कर देते हैं कि टीका पढ़ के भागवत समझ में नहीं आया, लेकिन यह अर्थ नहीं है। प्रभुपाद जी इसमें एकदम दिखाऊंगा, आप सर्च करना वेदव्यास में, इमेजिनरी कमेंट्रीज बोल रहा भागवत। बहुत बार श्लोक कोट करते हैं, अरे प्रवचन करने से भगवान समझ में नहीं आते। और भाग कुंती महारानी क्या बोल रही है? श्रुवंती गायंती गृणंती अभीष्णशः स्मरंती नंदंती तवे हितं जनः तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदां भजं। जो आपके बारे में श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वही लोग भगवान जो है कि भगवान को देख पाएंगे अचिरेण, अचिरेण बहुत जल्दी देख पाएंगे। तो अर्थ क्या हुआ? मनगणंत प्रवचन से, मनगणंत श्रवण से आप भगवान को नहीं समझ सकते, कितना ही प्रवचन कर लीजिए, लेकिन शास्त्र पे गुरु परंपरा के आधार पे अगर हम डिस्कशन करते तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं ज्ञान नष्ट करूंगा। क्या इन बातों का समझ पा रहे हो? इस श्लोक का गलत एप्लीकेशन इतना हुआ है कि कोई लिमिट नहीं है। और क्लासेस में भी लोग ऐसा बोल देते हैं, अरे प्रवचन करने से कुछ नहीं होता, तो फिर तुम प्रवचन क्यों कर रहे हो? क्यों बैठे क्लास देने के लिए बताइए? समझ में आ रहा है? मनगणन प्रवचन से फायदा नहीं, नहीं तो फिर श्रवण कीर्तन भक्ति फिर काय के लिए बताइए?
ठीक। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य,
मुझे लगता है वो भगवान का मित्र है इसलिए मानता है,
भक्त
है तो कृष्ण का भक्त है इसलिए भगवान मान रहा है। हम शिव जी के भक्त हैं, हम शिव जी को मानेंगे? दीजिए दीजिए दीजिए, समझ रहे ना आप? अरे आप तो इस कुरान वाले कृष्ण के भक्त, इसलिए कृष्ण को मानते हो। यस,
पहले भी जो महान आचार्य है जैसे
श्लोक याद आ रहा है, असित देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार किया, ऐसा नहीं कि फ्लैटरिंग कर रहे भगवान। यस,
अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है।
एक और बात ध्यान देना चाहिए, भगवान बोल रहे राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुकुम कर्तुम अव्ययम्। आपको प्रत्यक्ष दर्शन होगा इसका, तो ये भगवत गीता भागवत के ज्ञान से भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए, नहीं तो किसके लिए भाई बताइए? फिर क्यों भगवान इसको पढ़ेंगे? और इससे बातें भगवान आगे बोलेंगे, बहुवो ज्ञान तपसः पूता मद भाव आगतः, शुद्ध हुए हैं इस ज्ञान के द्वारा, तो ये ज्ञान हमें शुद्ध करने के लिए, पढ़िएगा आगे।
किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते।
किस रूप में नहीं मानते?
कृष्ण के रूप,
कृष्ण के रूप में तो कृष्ण को मानते हैं, भगवान के रूप में। बार बार रिपीट कर रहा था क्या कि ये बात थोड़ा ड्रिल होकर समझ में आ जाए। यस,
वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं, और
जैसे तो ये हटा क्यों रहे माइक बताइए?
कृष्ण रासलीला करते हैं, और
तो रासलीला तो करते ही हैं, उसमें क्या देखिए अच्छी मन उनको वह भौतिक
हाँ वो वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं और वे
इसका अर्थ समझते मन गढ़ंत मन में गढ़ लेना, अपने मन में ही मन की फैक्ट्री में कुछ छपा देना, छाप छाप करके छाप देना। याद है महाराज को कथा बताते हैं उसकी, कृष्ण की आत्मकथा बोले कोई बिहारी व्यक्ति था, बिहारी वो का बोलते उसने लिख दिया और महाराज को दे दिया पढ़ने के लिए। उसने बोला मैं कृष्ण हूँ, मेरा जन्म मथुरा में हुआ और फिर मेरे पिताजी लेके चले गए। वो अपने मन गढ़ंत तरीके से कृष्ण की लीला जो है बता रहा था, मैं तो फेंक दी किताब तुरंत, ऐसे कर शास्त्र सुनना चाहिए।
हाँ,
और आप खुद सोचो, एक एक्सपेरिमेंट करना, किसी भी व्यक्ति से करना नहीं चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के संग आप खाली मानसिक ऊहपोह करो। जैसे आज हमारे समुद्र प्रभु ने दिन में क्या किया, इसके बारे में आप खाली मन से सोचते रहिए कि क्या किया होगा सुबह से। आप कुछ बता पाएंगे कि किनसे मिले, क्या सेवा किए, कि सोए कि खाए कि क्या नहीं खाए, कुछ भी नहीं सोच सकते ना। अभी तो इतना है सामने ना, एक दिन की घटना आप नहीं बता सकते, और किस उद्देश्य से क्या किया, मैंने क्या किया। और सोचो इतनी लंबी, वो लोग हिंदी में कहेंगे फेंकते हैं,
कि कृष्ण के बारे में बोलना चालू कर दिए जो आज से 5-4 साल पहले आए थे। भगवान सोचने वाली बात है ना। अच्छा चलो, हो सकता हो आपने इनके रूम में जाकर इनके कपड़े छान करके आप समझ जाएंगे कि ये क्या करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन करते हैं ना, खोद रहे हैं, और उससे समझ लेंगे कि कृष्ण ने क्या बोला था। आपने सुना बचपन में कि वो बोल रहे थे जो कृष्ण ने गीता बोली थी वो शब्द अभी भी विद्यमान है, रिसर्च कर रहे हैं कि वो शब्द क्या है, सब पकड़े हैं। अरे गीता में लिखा क्यों नहीं समझ स्वीकार करते, एज इट इज लिखा वो स्वीकार नहीं करते। तो बड़े ढोंग की बात है। सोचो कि न्यूटन ने एफ इक्वल्स टू एम ए बोला, तो क्या उस शब्द को पकड़ने का प्रयास करोगे या जो किताब में लिखा है वो स्वीकार करोगे? बताओ क्या बोलेंगे? पढ़े ना फिजिक्स, क्या करते हैं हम लोग? न्यूटन जब था उसने क्या बोला उसको हम पकड़े, कैसा करते हैं हम लोग? कौन सी जगह कुछ भी नहीं करते ना, किताब में लिखा है पढ़ लेते हैं, काम में आ जाते हैं। और ये भी रिसर्च नहीं करते कि वो लॉट ठीक है कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं करते, वहां पर श्रद्धा रखते हैं। तो खाली बात यह है कि मन गणन तरह से भगवान के बारे में कुछ कहना ये बहुत बड़ा अपराध है, नहीं करना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए कि आई किसी एक भी एक प्रवचन बोल दिया, हो सकता है कि गंगा जी में स्नान करके उस स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। मुझे इतना क्रोध आया, हमने कहा पास कैसे गंगा जी के बारे में बोल दी, मैं बोला नहीं उस भक्त को मैंने। आप ये कैसे बोल सकते हो कि हो सकता हो बस गंगा जी से इतने फायदा हो कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए? तो ये कैसे बोल सकते हैं आप? इतनी बड़ी बात आप गंगा जी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? आप पढ़िएगा उसमें भागवत में टीका में लिखा है गंगा जी का दर्शन मात्र से मुक्त हो जाता है, स्पर्श करने मात्र से अविद्या नष्ट करती है। ये बस इतना बोला जाता है कि उसमें थोड़ा समय लगता है, हाँ चरण कमल की प्राप्ति होती है, जो गंगा जी में संस्कार होता है उसका उद्धार हो जाता है। तो यही सब बातें हमारे प्रवचन में कमी आ जाती है जब हम उसको कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो हम पढ़े नहीं है गुरुजनों के मुख से या सुने नहीं है। गलतियां करते हैं डिवोटी भी ऐसे करते हैं, हो सकता है कि बस खाली स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और ये वो नहीं समझ रहे हैं कि पोछ लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं कि क्या वो बोल रहे हैं। तो सब बातें ध्यान रखनी चाहिए किसी के संबंध में, भी बड़ा अपराध हो जाता है गंगा जी के संबंध में या फिर भगवान के संबंध में। उनकी महिमा हम अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, तुलसी जी के संबंध में ये सब शास्त्र देख करके समझना बोलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ बातें चलती रहती हैं, बीच बीच आती रहती हैं। यस,
और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं, ऐसे को
इसको थोड़ा भवाटवी में आ जाइए। थोड़ा सा भवाटवी समझते ना, जंगल एकदम घना जंगल भौतिक संसार में, और किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ रास्ता है बाहर निकलने का। हाँ इस रास्ते चले जाओ, वहां कीड़े काट रहे, उस रास्ते चले जाओ अजगर है, इस रास्ते चले जाओ। तो जिस जो व्यक्ति स्वयं ही अंधा है और भवाटवी में फंसा हुआ है उससे ये पूछो कि ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि तुम अंधे हो? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। कोई तो मुझे बोल रहा था, हाँ जेले में एक व्यक्ति था, बच्चा बोला मेरी श्रद्धा कम हो गई, ये बेवकूफ से सुन के आ गया वो भगवान के बारे में। आप मेरी एनालॉजी समझ रहे हैं? जंगल में है, घोर जंगल है, अंधकार है, और वो व्यक्ति अंधा है तथाकथित गुरु। आप सोचिए, और उससे कोई पूछ रहा है तो यह भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो अंधा है। अगर आंखें भी होती तो अंधकार में कितना समझ में आएगा, और उस पर भी अंधा हो तो समझ रहे ना। इसी को बोला जाता है, मैं कई बार से बोलता हूं, अंधा यथांधे रूपनीय माना, मैं अंधा हूं और आप भी अंधे हैं, और आप मेरे कंधे पे हाथ रखे हैं, और आप क्या सोच रहे हैं? गुरु जी को दिखाई पड़ रहा है, और गुरु जी बोले ना कि मैं भी अंधा हूं, ये हो रहा है। तो कहां गिरेंगे बताइए? गड्ढे मैंने खाई में, ऊपर उठाने वाला नहीं है कोई, बहुत डेंजरस है ये बात। तो ये भगवत गीता का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। जनता को कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं जनता को। भगवान के बारे में कुछ भी बोल देंगे ना, अगर उसकी इंद्र तृप्ति से मैच करेगा तुरंत स्वीकार कर लेगा, तो गुरु बना लेगा। एग्जैक्टली मतलब जनता को परपाल भी आज बहुत अच्छा कोटेशन था कि व्हाट इज द वैल्यू कि 4-5 गधे आपको बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कुछ गधे आपको बोलते बहुत बढ़िया बहुत बड़ी बढ़िया आदमी है साहब, बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, तो क्या मतलब है? भगवान की नजर में हमने कोई सेवा की योजना से पढ़ी आगे।
ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है, मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो।
अर्जुन की परंपरा मतलब श्रोत परंपरा, गुरु परंपरा में स्वीकार करें। क्या एक श्लोक और ले लें यार, आप थक गए? यस यस।
यहाँ पे भगवान कृष्ण बोले कि मेरा जो गीता ज्ञान है इसलिए मैं अर्जुन को दे रहा हूँ कि ये मेरा भक्त है और सखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गीता ज्ञान के लिए साक्ष्य भाव जरूरत है, जैसे बाछल है, माधुर्य भाव है, वो लोग क्या ज्ञान?
देखिए
हाँ,
भगवत गीता में जो बोल रहे हैं भक्त और सखा हो,
हाँ,
तो मतलब भक्ति होनी चाहिए कि वो किसी भी रस में हो, उससे तो मतलब हाँ। वो तो फिर प्लस वो रस को प्राप्त करके तो भगवत गीता का सारा साक्षात्कार अपने आप ही हो जाएगा तो उपलब्धि हो गई। अब ये अच्छा बात है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि युधिष्ठिर महाराज को भगवत गीता का ज्ञान नहीं था। कोई कभी कभी ये प्रश्न करते हैं, अरे भाई युधिष्ठिर महाराज भी तो थे, खाली अर्जुन को ही क्यों दिए? क्या युधिष्ठिर महाराज कम भक्त हैं? तो क्या उत्तर है?
उनको भी ज्ञान,
मेरा प्रश्न समझ रहे हैं?
हाँ।
कोई कहे कि भाई अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया, युधिष्ठिर महाराज से क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर महाराज भी तो भक्त हैं, तो क्या भक्त नहीं है? क्या दोस्त नहीं है? नहीं, भगवान ने चुन करके अर्जुन को दिया। अगर युधिष्ठिर महाराज को दिया तो तब कहते अरे अर्जुन क्या भक्त नहीं है? तो प्रश्न तो बना ही रहता। हर व्यक्ति को भगवान चुन करके एक माध्यम बनाते हैं, तो अर्जुन को भी ज्ञान दिया और युधिष्ठिर महाराज को भी ज्ञान दे सकते थे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि युधिष्ठिर को ज्ञान नहीं दिया या युधिष्ठिर महाराज कम प्रिय हैं, ऐसा नहीं है। किसी किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष भक्त को माध्यम बना के भगवान ज्ञान देते। हाँ, सखा कार्य भी है कि स्निग्ध है, उनका भगवान के प्रति प्रेम है। तो ये तो हम लोग ने भागवत में पढ़ा था, क्या है, स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गोह्यमप्यतः। शिष्य जो है स्निग्ध भाव का होता है, स्निग्ध मतलब प्रेमवत, सीधे समय कहते हैं इसका प्रेम है। तो ये भगवान से प्रेम से सुन रहे हैं तो ये होता है। आप अपने प्रत्यक्ष प्रचार में देख लो ना, जो बड़े श्रद्धा से सुनते हैं उनको बोलने का मन करता है, और ऐसे कोई आपको बोले कि भाई हाँ 500 रुपये जमा किए, हम जमा किए हैं क्लास दीजिए, तो ना मन करता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार से ट्रांसफर हो नहीं सकता। अगले वाले श्लोक में अर्जुन का प्रश्न उठेगा, तो उसको मैं जो है अगले क्लास में लूंगा। प्रश्न करेंगे कि भाई आप जानते हो प्रश्न क्या है, कि आप तो अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवेशता, तो थीम चेंज होगी, तो उसको हम अगली बार लेंगे। स्टॉप कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद भगवद गीता।